सेहत की बातें डॉक्टर से बातें, क्या करें क्या ना करें, रोगों से कैसे बचें, जानने के लिए सुनते रहें अर्पण रेडियो से प्रसारित कार्यक्रम आरोग्य वाणी।
आरोग्य वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को संज्ञा
और अनीश का नमस्कार।
श्रोता, सभ्यता ने हमें अनेक उपहारों के साथ ढेर सारे अभिशाप भी प्रदान किए हैं। आज के उन्नत युग में हजारों मनुष्य अनेक प्रकार के मानसिक रोगों से पीड़ित हैं। वे अपनी व्यथाएं, कथाएं, वेदनाएं सुनाते नहीं थकते। एकांत में कोने में पड़े पड़े निश्वास निकालते और हाथ पर हाथ रखे हुए दिनों को धक्के दे रहे हैं। कितनी दयनीय स्थिति है ना ऐसे रोगियों की। ये रोगी होते हैं मन के रोगी या मानसिक रोगी।
मनोविकार या मेंटल डिसऑर्डर किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य की वो स्थिति है जिसे किसी स्वस्थ व्यक्ति से तुलना करने पर सामान्य नहीं कहा जाता। मनोरोग मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन की वजह से पैदा होते हैं तथा इसके उपचार के लिए मनोरोग चिकित्सा की जरूरत होती है।
आज हमारे साथ कार्यक्रम में है मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष तिवारी, जो बिलासपुर के सेंद्री में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य मनोरोग अस्पताल में कार्यरत हैं। स्वागत करते हैं आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में।
जैसे तन की बीमारी है वैसे ही मन की बीमारी है। हम जब किसी भी चीज़ को मान ले कि हमारे अंदर यह गलती है या हमारे अंदर ये बीमारी आ गई है जिसके लिए कोई बाहरी हवा जो होती नहीं है वो जिम्मेदार नहीं है। हम मान लेंगे कि हमारी आँख खराब है, हमारे को चश्मा लग जाता है ठीक दिखाई देने लग जाता है, हमारी चमड़ी में खुजली हो गई है इलाज लेते हैं तो ठीक हो जाता है। वैसे ही मन का बीमारी जो वास्तव में मस्तिष्क की बीमारी है जिसका इलाज अगर समय पर लिया जाए, पूरे टाइम लिया जाए, तो बहुत आसानी से ज़्यादातर मरीज बाहर आ जाते हैं और वो अपनी पूरी ज़िंदगी आसानी से सामान्य ढंग से बिता सकते हैं। लगभग 70% के स्किजोफ्रेनिया जैसे मरीजों के क्या बोलते हैं जो पहले लाइलाज माना जाता था, आसानी से और दवाई के बलबूते अपनी ज़िंदगी नॉर्मल ढंग से बिता सकते हैं।
सामान्य भाषा में कहें तो कोई वहम का शिकार है जिसमें मन में संदेह शंका घर कर जाती है, तो कोई उत्तेजना या एक्साइटमेंट से युक्त है जिसमें नसों में एकाएक तीव्रता आ जाती है, अंतःकरण में अनावश्यक दुख भुख मच जाती है और थोड़े समय के लिए हाथ पांव फूल जाते हैं, कुछ समय के लिए संपूर्ण शरीर आंदोलित हो जाता है।
दो चार बार किसी कार्य में निष्फल हो जाने से कोई नैराश्य का शिकार हो चुका है, उसे चारों ओर अंधकार ही अंधकार नजर आता है, तो कोई मन की अस्त व्यस्त अवस्था उद्वेग से जुड़ गया है जो भय का प्रमुख अंग है।
अति चिंतित रहने की अवस्था भी बीमार मन की एक अवस्था है जिसमें अनहोनी अनिष्ट बुरी बातों की कल्पनाएं दूसरों की बुरी हालत देखकर स्वयं अपने लिए भी वैसी ही बातों को सोचना शामिल होता है।
विभ्रम की स्थिति में मस्तिष्क के ज्ञान तंतु इतने निर्मल हो जाते हैं कि जरा जरा सी बातों पर मनुष्य शंका करने लगता है।
और हिस्टीरिया का मानसिक रोग प्रायः अतृप्त कामेच्छा से संबंध रखता है।
अन्य मनस्कता की भ्रमित मानसिक स्थिति में रोगी न उत्तेजित रहता है न निरुत्साहित, वो बिल्कुल न्यूट्रल सा रहता है, उसका मन शून्यमय हो जाता है।
आत्मग्लानी का बोझ भी मानव को मानसिक रूप से दुर्बल बना देता है। हमसे कोई महापाप हो गया, अब मोक्ष नहीं हो सकता, मैंने सर्वनाश कर लिया, इतनी भारी गलती करके मुझे जीवित नहीं रहना चाहिए, ऐसे विचारों को लेकर रोगी बड़ा पछताता और दुखी होता है।
इसी तरह आत्महीनता या इन्फीरियोरिटी के रोगी इतने संकोची और लज्जाशील हो जाते हैं कि महान अपराधी की तरह चुप्पी धारण कर लेते हैं और हमेशा नीची दृष्टि किए रहते हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ करता है कि संसार उनकी प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक हाव भाव, कपड़े, जूते, टोपी सब कुछ घूर घूर कर देख रहा है।
कायरता भी एक प्रकार की मानसिक दुर्बलता है। ऐसे व्यक्ति प्रत्येक कार्य को संदिग्ध चित्त से संपन्न करता है। कायर मनुष्य जरा जरा सी बातों में दब कर नर्क की यातनाएं भोगा करता है।
भय, सनक, कामातुरता, विकृत मानसिक प्रवृत्ति, गुमसुम हो जाना, मानसिक थकावट, प्रमाद, निद्रित अवस्था में चलना फिरना, अनिद्रा, ये सारे सामान्य से लगने वाले लक्षण मानसिक बीमारियों के लक्षण हैं। इसलिए
जिस तरह से तन की बीमारी को दिखाने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मन की ऐसी छोटी छोटी सी लगने वाली बीमारियों के लिए मनोचिकित्सक के पास जाने में न कतराएं।
अन्य बीमारी के तहत मनोरोगियों को भी एक सामान्य सा बीमारी माने, इसको लेके भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में और अभी इतनी अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हो गई हैं कि हम अगर मरीज को ढंग से इलाज कराएं तो ज़्यादातर स्थितियों में बहुत आसानी से हमको कंट्रोल करके उन्हें सामान्य जिंदगी में और सामाजिक व्यवस्था बनाए हुए उनको रख सकते हैं।
मनोचिकित्सक से सलाह लेने, काउंसलिंग करने में कोई आपको पागल करार नहीं कर देगा, बल्कि आपकी अस्त व्यस्त कंफ्यूज्ड जिंदगी कुछ सिस्टमेटिक हो जाएगी।
बेसिकली हमारा दिमाग भी कंप्यूटर है और इसमें जो न्यूरोकेमिकल्स हैं जो अपने सूचनाओं को लाने ले जाने का काम करते हैं, इनमें रासायनिक गड़बड़ियाँ जो आती हैं वो उसके अंदर उसके दिमाग की फाइल को करप्ट कर देती है और उस करप्ट होने के कारण उसके सारे सिस्टम उस फाइल पे काम करना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कोई एक्टिंग नहीं करते रहता है। उसके अंदर इतना ताकत, सोच विचार और नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करते रहता है, वो सारे सिम्टम ना चाहते हुए भी आ जाते हैं जिसको वो फॉलोअप करता है।
इतना सब सुनने के बाद डॉक्टर साहब से हमने ये जानना चाहा कि घर में सामान्य से लगने वाले सदस्य में ऐसे कौन से परिवर्तन आए जब उसको लेकर मनोचिकित्सक के पास सलाह लेने या काउंसलिंग करने के लिए पहुंचना जरूरी है।
अगर आपके बच्चे में लगता कि कुछ असामान्य घट रहा है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, वो बिना मतलब के सिर दर्द की शिकायत कर रहा है, बार बार पेट दर्द की शिकायत कर रहा है और अजीब गरीब हरकत कर रहा है, अनमना सा रह रहा है, उदास सा रह रहा है या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है, और उसको अपन नॉर्मल पीडियाट्रिशियन या शिशु रोग को दिखा रहे हैं या मेडिसिन वालों को दिखा रहे हैं और वो डॉक्टर ये बता रहे हैं कि इसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, तो ये निश्चित रूप से समझ लीजिए कि अलार्मिंग सिम्टम है, कि इसे साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिम्टम समूह बता रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं से स्ट्रेस में या किसी ना किसी डिसऑर्डर में आ रहा है, जिसकी बहुत बारीकी से जांच पड़ताल करने के बाद ही पता चलेगा कि ये दबाव समूह कहाँ से है या बीमारी कहाँ से कैसी आ रही है, जिसको बहुत बारीक ढंग से ढूंढने में अपन उसको खोज पाएंगे और उस ढंग से सलाह या जरूरत पड़ने पर दवाई देकर उसको ठीक कर पाएंगे।
एक शब्द होता है सामाजिक स्टिग्मा। किसी घर में यदि कोई व्यक्ति मानसिक रोग की तरफ कदम बढ़ाता है तो पहले तो घर वाले उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उसको मनोचिकित्सक के पास ले जाने में एक हिचक रखते हैं। हमारा बेटा पागल थोड़ी ना है जो हम उसे मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे। हृदय के रोग, दिल के रोग, किडनी के रोग किसी को भी हो तो वे डॉक्टरों के पास जाने में कोई हिचक महसूस नहीं करते, लेकिन इस सोशल स्टिग्मा के कारण कि लोग क्या कहेंगे, मनोचिकित्सक के पास जाने में कतराते हैं और ऐसा कुछ होने पर पहले पहुंच जाते हैं झाड़ फूक करवाने के लिए।
डॉक्टर के पास तो नहीं, ज़्यादातर तो लोग झाड़ फूक के पास ही अटक जाते हैं, पर डॉक्टर के पास भी पहुंचने लग गए हैं। डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब अंतिम हथियार रहता है। सामाजिक स्टिग्मा या सोशल स्टिग्मा होने की वजह से कोई पेशेंट बीमार पड़ा तो उसको ये बोल दे कि बाहरी हवा लगी है या किसी ने जादू टोना कर दिया, ऐसा बोल के वो इस चीज़ से बच जाते हैं कि हमारे यहाँ मनोरोग की बीमारी है। मनोरोग की बीमारी को लोग बहुत बड़ा धक्का समझते कि हमारे दिमाग घर में कोई मनोरोगी कैसे हो सकता है, लेकिन किसी को हार्ट की बीमारी है कि मैं डॉक्टर फलाने से इलाज बताते हैं, डायबिटीज़ के इलाज मैं कहाँ से करा रहा हूँ ये दुनिया भर के लोगों को बताते हैं, लेकिन एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसको अपन एपिलेप्सी या मिर्गियाना बोलते हैं, जिसका केवल बीमारी नहीं केवल बीमारी का लक्षण मात्र है, जैसे बुखार रहता है वैसे बीमारी का लक्षण है अपना एपिलेप्सी या मिर्गियाना, उसको लोग बताने में शर्माते हैं कि कहीं हमारी बेटी की शादी या हमारे बेटे की शादी में कोई लफड़ा मत आ जाए। तो सामाजिक चेतना इसके लिए बहुत आवश्यक है, लोग इसके प्रति अवेयर होंगे तो खुद ब खुद मरीज डॉक्टर या अस्पताल में जाएंगे तो ज़्यादा जल्दी लाभान्वित होंगे और अपन इन बीमारियों को जल्दी से आसानी से काबू पा पाएंगे।
मानसिक रोग एक ऐसा शब्द है जिससे इसके कारणों और उपचार के विषय में न जाने इसी तरह की कितनी भ्रांतियां और आशंकाएं जुड़ी हुई हैं। कुछ लोग इसे एक असाध्य अनुवांशिक और छूत की बीमारी मानते हैं, तो कुछ जादू टोना, भूत प्रेत और डायन का प्रकोप, लेकिन ये सब गलत है। सही धारणा ये है कि ये बीमारी है और वैज्ञानिक ढंग से चिकित्सा विज्ञान द्वारा इसका इलाज संभव है। ये भी सही नहीं है कि
मानसिक विकार कोई रोग नहीं है बल्कि बुरी आत्माओं की वजह से पैदा होते हैं। दवाओं के सेवन से बचना चाहिए। आपको ये रोग अपनी कमजोरी से हुआ है और इससे बचाव करना चाहिए। दवाएं नुकसानदायक होती हैं। ये निर्भरता बढ़ाती है और जीवन भर लेनी पड़ती है। ज्यादातर मनोविकारों का कोई इलाज नहीं होता। बच्चों को दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। इलाज के लिए नींद की गोलियां दी जाती है। अवसाद जैसे मर्ज अपने आप ठीक हो जाते हैं या प्रभावित व्यक्ति के।
अब जैसे स्किजोफ्रेनिया का मरीज है, उसको लगा कि आप उसको जान से मारना चाहती हैं, तो वो एग्रेसिव है, चिड़चिड़ा है, मारपीट कर रहा है। उसको ये लगता है कि अगर वो बाहर निकलेगा तो लोग उसको जान से मार देंगे, सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। उसके अंदर जो केमिकल चेंजेज होते हैं, उनके अंदर जब हेलुसिनेशन होता है तो उसको स्पष्ट आवाज आती है, कई बार तो रनिंग का मंडली आती है, देखो ये हाथ हिला रहा है, देखो ये हाथ उठा रहा है, देखो ये नहा रहा है, देखो धो रहा है, ये डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर की दवाई इसको सूट नहीं करेगी, ऐसा भी आवाजें इतनी स्पष्ट आती है जितना आप सुन रहे हैं मेरी आवाज़ को। या कई बार विजुअल हेलुसिनेशन होता है तो इतना ही विजुअल होता है कि हम डबल दिखाई देंगे, ट्रिपल दिखाई देंगे, या आपस में तो बड़बड़ाते हैं ना, तो बेसिकली उनको एक्टिंग आउट बिहेवियर, उनको ये लगता है कि दिखाई देगा, उसका वो जवाब देते रहते हैं, तो उसका इरिटेशन जो है वो पैरानॉइड होने के कारण है, डिल्यूजन होने के लिए आप मुझे जान से मारना चाहते हैं, ना कि चिड़चिड़ापन की बीमारी, इसलिए आपको गुस्सा हो रहा है, वो तो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है।
स्किज़ोफ्रेनिया नाम की इस बीमारी के बारे में हम पहले के अंक में आपको विस्तृत जानकारी दे चुके हैं। आज डॉक्टर आशुतोष तिवारी के साथ हम एक और बहुत तेजी से बढ़ती हुई मानसिक बीमारी उन्माद या मैनिया पर बातचीत करेंगे। क्या है ये उन्माद?
उन्माद या मैनिया अपन एक ऐसे लक्षण या सिम्टम के समूह को कहते हैं जिसमें उन्माद आने की अवस्था में मरीज की नींद डिस्टर्ब हो जाती है, उसको नींद बिल्कुल कम आती है, इवन वो केवल 24 घंटे में 2 घंटा अगर सोता है, उसके 2 घंटे सोने के बाद और 22 घंटे जागने के बाद भी वो वापस अपनी पुरानी ताकत पे आ जाता है और उतने ही एनर्जेटिक हो जाता है। दूसरा, मरीज का जो एनर्जी लेवल है सामान्य के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। इस बीच ये भी देखा जाता है कि उसके अंदर काम शक्ति भी बढ़ी हुई रहती है, इसके कारण वो अजीब गरीब हरकत करना या इनहिबिशन उसका खत्म हो जाता है, लिहाज खत्म हो जाता है, तो वो कामोद्दीपक होकर अजीब गरीब व्यवहार करता है जो समाज को और परिवार को खटकता हुआ महसूस होता है। इसके अलावा उसकी सोच में विकार उत्पन्न हो जाता है, उसको ये लगता है कि वो भगवान है या भगवान का सबसे बड़ा भक्त है, या उसको ये लगता है कि अंदर उसके अंदर सबसे ज़्यादा ताकत है, उसका व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है कि वो अपनी हैसियत से ज़्यादा बढ़ के काम करने लग जाता है, भले वो 10,000 का आदमी हो 1,00,000 बांटने की बात करने लग जाता है, या वो डिमांडिंग हो जाता है, मुझे खाने में ये दो, मुझे पैसे में दो, मुझे उस लड़की से शादी करा दो, वगैरह वगैरह वगैरह। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, खास बात में ये रहती है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है, रेस्टलेसनेस ज़्यादा उसके अंदर रहती है, वो एक जगह टिक के बैठ नहीं पाता। मरीज के परिजन बहुत परेशान रहते हैं, उसको बांध बूंद के धरते हैं, उसके साथ पिटाई करते हैं और पेशेंट गाली गलौज करने लग जाता है। ज़्यादातर उसको जो बातें बोलता है उसमें अगर चुनौती दी जाए तो वो गुस्सा हो जाता है, वो मारपीट के लिए तैयार हो जाता है। ये बड़े सामान्य लक्षण हैं जिसके बलौदर अपन अपने उन्माद के मरीजों को या मैनिया के मरीजों को आसानी से पहचान सकते हैं।
इन लक्षणों को सुनकर क्या ऐसा नहीं लगा कि इनमें से बहुत सारे लक्षण तो ऐसे हैं जो बहुत सारे लोगों में पाए जाते हैं, तो क्या वे सब उन्माद के मरीज हैं?
जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसमें मूड सिम्टम या जो मन की इच्छा की बात आती है उसमें यह देखा जाता है कि इसको गुस्सा अगर है तो गुस्सा लगातार बना रहता है, ख़त्म नहीं होता, या उसको बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल बना हुआ उसके मन में, वो आशीर्वाद घूमता आशीर्वाद देता हुआ मिल जाएगा आपको, सामान बांटता हुआ मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा मुस्कुराता मिलता जाएगा, या बहुत ज़्यादा ओवर फैमिलियर हो जाएगा, हर आदमी से हाथ मिलाता हुआ, हर आदमी से पैर पड़ता हुआ, हर आदमी से हाथ जोड़ता हुआ मिल जाएगा। ये सिम्टम उसके लगातार ज़्यादातर दिन में मौजूद रहते हैं, तब अपन एसएस मरीजों को बोलते हैं कि ये मरीज उन्माद का मरीज है।
ये लक्षण पैदाइशी होते हैं, अनुवांशिक होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं या अचानक प्रकट हो जाते हैं?
जी हाँ, ये अनुवांशिक बीमारी है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत आसानी से या कई बार भाई बहनों में देखने में आती है। ज़्यादातर ये देखा गया है कि ये खासकर मेनिया का जो एपिसोड है अचानक ही आना चालू हो जाता है। जो खासकर बाइपोलर पेशेंट रहते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट रहते हैं, तो उनमें पुरानी हिस्ट्री रहती है या मेनिया का पहला एपिसोड भी आया है, तो एब्रप्ट आने की संभावना या अचानक आने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके अलावा ये जो सिम्टम समूह मैंने आपको बनाया मेनिया के, ये बहुत सारे नशेलचियों में जो गांजा भांग शराब वगैरह लेते हैं उनमें भी ये इस टाइप के सिम्टम के समूह या मेनिया सिम्टम बहुत देखे जाते हैं।
जैसा आपने स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बताया कि उन मरीजों को हेलुसिनेशन होता है, उनको आवाजें सुनाई पड़ती हैं, उनको विजुअल चित्र दिखाई देते हैं, क्या मैनिया के मरीजों के साथ भी ऐसा होता है?
हाँ, इन मरीजों में भी हेलुसिनेशन मतलब स्टिमुलस विदाउट एनी ऑब्जेक्ट जो होता है, उसके वजह से उन लोगों को लगता है कि मुझे काली माई दिखाई दे रही है, हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं, भगवान मुझसे बातचीत कर रहे हैं, भगवान ने मुझे स्पेशल बनाया है, मेरा जन्म इस मानव कल्याण के लिए हुआ है, विश्व कल्याण के लिए हुआ है, मेरी बात मान के चलोगे तो विश्व की पूरी सारी समस्याओं को मैं ख़त्म कर दूंगा, देश प्रदेश की सारी समस्याओं को ख़त्म कर दूंगा। ये ऐसी गलत धारणाएँ जो हो नहीं सकती हैं उसके मन में लगातार आती रहती हैं और उसको एक्सप्रेस करते रहते हैं।
स्ट्रेस या तनाव को आजकल हर बीमारी के साथ जोड़ा जाता है, तो क्या मैनिया का कारण भी स्ट्रेस है?
स्ट्रेस की वजह से जो अपने अंदर की गड़बड़ियां हैं वो सामने आ सकती हैं, लेकिन हर आदमी के पास स्ट्रेस है तो हर आदमी उन्माद का मरीज तो नहीं बन सकता। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मरीज के अंदर जीनेटिक लोड है, हम किसी मरीज की बात करें तो उसके माता पिता के 3-4 पीढ़ियों में किसी को कहा हो या किसी नशे की वजह से भी इन बीमारियों को कई बार प्रादुर्भाव होता है, इसलिए ये सिम्टम के समूह सामने आते हैं।
इस बीमारी के लिए क्या कोई उम्र निर्धारित होती है कि बचपने से बुढ़ापे तक कभी भी ये बीमारी किसी को भी हो सकती है?
उन्माद का बीमारी ज़्यादातर अपन को बहुत आसानी से एडल्ट एज में ज़्यादा पहचान में आता है, लेकिन आजकल आमतौर पर छोटे बच्चों में भी बहुत आसानी से बीमारी दिखने लग गई है, जिनका सिम्टम समूह जो अभी मैंने एडल्ट के हिसाब से बताया था उसे थोड़ा भिन्न होता है, लेकिन ये बच्चों में भी बाइपोलर या मैनिया की बीमारी होती है।
ऐसे मरीज अगर सही समय पर इलाज के लिए पहुंच जाते हैं तो उनके ठीक होने की कितनी संभावना होती है, और अगर वे लोग देर कर देते हैं तब क्या स्थितियां बनती?
ऐसे मरीजों को शीघ्रतशीघ्र ही साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, जरूरत पड़ने पे भर्ती करने की भी आवश्यकता है, ताकि हम जल्द से इन बीमारियों के लक्षणों को समूह को अपनी दवाइयों से इसको कंट्रोल पा सकें, और मरीज जब मैनेजेबल हो जाए तो उसको अपन घर पर जाने की सलाह दे देते हैं, और इनका ट्रीटमेंट लंबा चलता है। इलाज के लिए एक थोड़ा सा धैर्य रखने वाली बात आती है, क्योंकि ये पेशेंट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव उन्माद या बहुत चिड़चिड़े स्वभाव के और मारपीट और वायलेंस के मोड में रहते हैं, तो ऐसे में मरीज के परिवार वालों को समझना पड़ता है कि ये कोई दैवी प्रकोप नहीं है। ज़्यादातर हम समाज में दृष्टिकोण डालते हैं डॉक्टर की हैसियत से, एक सामाजिक हैसियत से, तो लोगों समझते हैं कि इसको देवी चढ़ गई है, देवता चढ़ गया है, तो उसका झाड़ फूक के लिए इलाज के लिए जाते हैं। ये हमारे देश के लिए विडम्बना है कि मरीज को इलाज के बदले झाड़ फूक ज़्यादा आसान समझा जाता है, और इस चीज़ को लेकर मरीज का बहुत सारा समय और परिवार वालों का बहुत सारा धन खराब हो जाता है। मरीज को लेट लतीफ लाने की वजह से जो बहुमूल्य समय था, जो उसको दवाई देने में लगना था, उससे भी वो दूर हो जाता है, तो इन मरीजों को रिजल्ट आने में देर लगती है। खैर, जब भी मरीज अगर आता है तो उस मरीज को ज़्यादातर लगता है कि क्या बोलते हैं, अगर दवाई खाने को तैयार है तो उसको ओपीडी बेसिस पे हम दवाई दे देते हैं, और दवाई का असर दिखने में लंबा टाइम लगता है, जल्दी से ठीक नहीं होता। लेकिन बहुत ज़्यादा वायलेंस है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर हिंसात्मक भाव हैं, गुस्से के भाव हैं और संदेह के भाव हैं अपने परिवार वालों के लिए, तो ऐसे मरीज के लिए इंडो केयर या भर्ती करना आवश्यक हो जाता है। जरूरत पड़ने पर इनको बांध के रखने की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर पेशेंट एडमिट हो जाता है तो ज़्यादातर अपन जो इंजेक्शन दवाइयाँ तेज डालते हैं तो राहत आना चालू हो जाता है। बावजूद इसके कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनको हाथ तक बांधने की जरूरत पड़ती है।
और अगर इस बीमारी का इलाज ना करवाया जाए तब क्या स्थितियां निर्मित होती हैं?
अगर मैनिया का इलाज ना कराया जाए तो ये धीरे धीरे अपना विकराल रूप ग्रहण कर सकता है और इन मरीजों में ये भावना आ जाती कि लोग उसके प्रति जलन रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्पेशल ताकतें हैं जिसके कारण लोग उसके प्रति जलन की भावना रखते हैं, लोग उसका नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कई बार उसका विकृत रूप ये भी नज़र आता है कि उसको अगर लगता है कि पर्टिकुलर सदस्य घर का या बाहर का है तो उसके साथ वायलेंस कर सकता है, मारपीट कर सकता है, यौन कई बार हिंसात्मक या मर्डर जैसी घटनाएं भी सामने आती हैं। तो ऐसे मरीजों को तो तत्काल इलाज करना, बंद रखना और सहायता पहुंचाना अति आवश्यक है।
इस तरह के रोगी जिसके घर में मौजूद हैं उन घर वालों से डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं?
ऐसे मरीजों के घर वालों से मेरा नम्र निवेदन है कि वो लगातार साइकेट्रिस्ट के टच में बने रहें, लगातार दवाई लेते रहें, डॉक्टर साहब ने जो उनको सलाहियत दी है उसका मतलब समझें, ना समझ में आने पर दोबारा और तिबारा सवाल करें, जब तक वो संतुष्ट ना हो जाएं, अपने मन के अंदर की कुछ गलतफहमियां उसको ना निकालें तब तक सवाल पूछें, और संतुष्ट होने के बाद अपने मरीज को लगातार इलाज देते रहें। इलाज चलने से कम उसकी मानव जिंदगी उचित अवस्था में चलते रहेगी, और कभी इतनी अच्छी दवाइयाँ आ गई कि बाकी लोगों को पता भी नहीं चलेगा एक एपिसोड के बाद कि वास्तव में ये इतना बड़ा मरीज है और उसे दवाइयाँ चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं।
कई बार हम सड़क पर कुछ चिल्लाते हुए पागल से आदमियों को देखते हैं जो ढेर सारे कपड़े अपने शरीर पर लादे रहते हैं या बिना कपड़ों के घूम रहे होते हैं, क्या ये मैनिया के ही रोगी होते हैं? जब हमने डॉक्टर साहब से ये जानना चाहा तो उन्होंने बताया,
हाँ, ये जो मरीज रास्ते में घूमता फिरता गंदे कपड़ों में अपने आप में बड़बड़ाता हुआ और अपने आप में किसी को जवाब देता हुआ महसूस होता है, बेसिकली ये हेलुसिनेशन उनको लगातार होते रहते हैं, उनके अंदर कानों में आवाज़ें आती रहती हैं जिसका वो जवाब देते रहते हैं। और ज़्यादातर इस मरीज में जो होमलेस पीपल रहते हैं और ये मरीज स्किजोफ्रेनिया के होते हैं।
मन से जुड़े रोगों में रोग चाहे स्किज़ोफ्रेनिया का हो, डिप्रेशन का हो या मैनिया का, डॉक्टर साहब की इस समझाइश पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा।
मैनिया का इलाज एक बार अटैक पड़ता है तो 5-6 महीने तक कम रहता है लगातार, और कुछ एपिसोड 2-3 बार आने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन बहुत अनिश्चित दुनिया है मैनिया की, कई बार ये लाइफ लॉन्ग भी चलता है। तो इसमें कई बार मरीज एक बार दवाई लेने के बाद सोचता है कि ठीक हो गया, या उसके घर वाले बोलते हैं कि दवाइयां गर्म करती है, या अनपढ़ पड़ोसी बताता है कि दवाइयां गर्म करने के कारण पेट को ख़राब कर सकती है, या उनके पढ़े लिखे तथाकथित लोग बताते हैं कि इन दवाइयों के लेने के नशे की आदत पड़ जाएगी, या कभी कभी दवा दुकानदार वाला भी अपनी होशियारी में बताता है कि दवाई से नुकसान हो सकता है, जो बहुत बड़ी विडंबना है कि साइकेट्रिस्ट जो गिने चुने हमारे प्रदेश में हैं उनकी बात ना सुन के अड़ोसी पड़ोसी और मेडिकल वालों की बातें सुनी जाती हैं और दवाइयों को बंद कर दिया जाता है, और दुर्भाग्यवश जो मरीज बहुत पहले ठीक हो जाना चाहिए था वो जिंदगी भर रोड में घूमता हुआ नजर आता है और सामाजिक विद्रूपता को दिखाता है।
मनोरोगियों से इलाज कराने के संदर्भ में कुछ और खास बातें।
मनोरोग चिकित्सक द्वारा दवाएं बताई गई है तो इनका सेवन अवश्य करना चाहिए। दूसरी बीमारियों की तरह ये रोग भी आंतरिक स्तर पर जैविक असंतुलन की वजह से होता है। निगरानी में दवाएं लेना कारगर होता है। अब तो नई दवाओं के उपलब्ध होने के बाद लंबी अवधि तक दवाएं लेने के मामले कम हो रहे हैं। दवाओं के सेवन से मनोविकारों में काफी कमी होती है, खासतौर से तब जबकि इलाज शुरुआती चरण में आरंभ हो जाए। मनोविकारों के उपचार में दी जाने वाली दवाएं रासायनिक असंतुलन को बहाल करती है। कुछ दवाओं में नींद आती है लेकिन वे नींद की गोलियां नहीं होती।
आज के इस कार्यक्रम में मनोरोगों और मैनिया या उन्माद के विषय में हमें जानकारी दी मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष तिवारी ने। और अब वक्त हो गया है खत्म, इसलिए दीजिए हमको इजाजत, सभी को संज्ञा
और अनीश का नमस्कार।
सुनते रहे अर्पण रेडियो से प्रसारित कार्यक्रम आरोग्य वाणी।
आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पण।